स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 2 फरवरी और दिन मंगलवार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका वायरस को स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय खतरा घोषित किया।
Microcephaly and other neurological abnormalities reported in Latin America constitutes a public health emergency.
अमेरिका के आयोवा राज्य में आज रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ही के समर्थक अपने अपने उम्मीदवारों को चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं, लेकिन क्या सोचते हैं अमेरिका के मुस्लिम मतदाता?
ट्रंप ये बातें कह रहा है और उसको सपोर्ट वो कर रहे हैं जिनके दिल में कुछ माइनॉरिटीज मुसलमानों के मतलब कुछ नेगेटिव व्यूज हैं।
मध्य प्रदेश के बैगा आदिवासियों पर होगी एक खास रिपोर्ट, अखबारों की समीक्षा और खेल की खबरें भी, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका वायरस के संक्रमण को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। संगठन की महानिदेशक मार्गरेट चान ने जीका वायरस के संक्रमण के इलाज के लिए दवाएं और टीका बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि लैटिन अमरीकी देशों में इस साल करीब 40 लाख लोग जीका वायरस के संक्रमण से पीड़ित हो सकते हैं। दक्षिण अमरीकी देशों में छोटे सिर के साथ पैदा होने वाले बच्चों के मामले बढ़ने से चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी बच्चों में पाई जा रही इस बीमारी के जीका वायरस से संबंध के बारे में एक आपात जाँच का आदेश दिया है। उधर ब्राजील की सरकार ने कहा है कि जीका वायरस के संक्रमण से रियो में होने वाले ओलंपिक खेलों पर कोई खतरा नहीं है। ब्राजील के राष्ट्रपति डिल्मा रूएफ के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं को छोड़कर खिलाड़ियों को किसी तरह का खतरा नहीं है। सर्दियों के मौसम में होने वाले ओलंपिक खेलों में ठंड के मौसम के कारण मच्छरों की संख्या कम हो जाएगी। इससे पहले राष्ट्रपति रूएफ ने स्वास्थ्य अधिकारियों को उन जगहों पर बल प्रयोग करने की छूट दी जहां मच्छर पैदा होने की संभावना हो। ब्राजील के अधिकारियों ने कहा है कि करीब 4.5 करोड़ मकानों में से 1/4 में मच्छरों के लिए जांच की गई है। सीरिया के विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टाफन डे मिस्टूरा के साथ उनकी सकारात्मक बातचीत हुई है। मंगलवार को सीरियाई सरकार के प्रतिनिधियों से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों की बातचीत के नतीजे का इंतजार किया जा रहा है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सीरिया शांति वार्ता चल रही है। स्टेफन डी मिस्टूरा ने कहा है कि जिनेवा में सीरिया की शांति वार्ता की आधिकारिक शुरुआत हो गई है।
We are starting officially the Geneva talks. We are actually listening with attention to the.
सीरिया की शांति वार्ता की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। हम विपक्षी दलों के गठबंधन HNC से बात कर रहे हैं। हम सरकार के प्रतिनिधियों की भी बात सुनेंगे। हमारे सामने चुनौतियां भी हैं कि अलग अलग स्तर पर चर्चा कैसे की जाए। हमें युद्ध विराम पर भी बातचीत करनी है। ये थे स्टेफन डी मिस्टूरा के शब्द। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने कहा है कि क्यूबा पर से अमरीकी प्रतिबंध हटा लिए जाने चाहिए। क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो फ्रांस की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने फ्रांस और क्यूबा के बीच राजनीति, व्यापार और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने की बात कही। फ्रांस और क्यूबा के बीच पर्यटन, परिवहन और व्यापार से जुड़े कई समझौते भी हुए। 2006 में सत्ता संभालने के बाद राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पहली बार यूरोप की यात्रा पर गए हैं। सऊदी अरब ने इस बात को माना है कि अफगानिस्तान में सक्रिय चरमपंथी संगठन अलकायदा के लिए अरबों डॉलर का इंतजाम उसी की वित्तीय सिस्टम से हुआ था। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है फरवरी की 2 तारीख और दिन मंगलवार। अमेरिका में चुनावों की प्रक्रिया आयोवा राज्य से शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले बात हम करेंगे जीका वायरस की। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि जीका वायरस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेहत के लिए एक खतरा है और इससे निपटने के लिए संयुक्त रूप से आपात कदम उठाने की ज़रूरत है। इस वायरस के तेजी से फैलने के कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंतित हैं, लेकिन ब्राजील का कहना है कि इसी साल रियो में होने वाले ओलंपिक खेलों को इससे कोई खतरा नहीं है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए हरिता कांडपाल से।
मच्छरों के काटने से होने वाले जीका वायरस के संक्रमण ने उत्तरी और दक्षिणी अमरीकी महाद्वीप के करीब 23 देशों में खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी सतर्क हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका वायरस के बढ़ते संक्रमण को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। संगठन की मुखिया डॉक्टर मार्गरेट चान ने जिनेवा में बुलाई गई आपात बैठक के बाद ये घोषणा की।
आई एम नाउ डिक्लेयरिंग दैट द रीसेंट क्लस्टर
मार्गरेट चैन ने कहा कि मैं ये घोषणा करती हूं कि हाल ही में लैटिन अमेरिका में माइक्रोसेफली और दूसरी तंत्रिका संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं सामने आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चिंता का कारण बन गया है। इसे हम सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आपातकाल की घोषणा करते हैं। इससे पहले 2014 में फ्रेंच पोलिनेशिया में ऐसे ही मामले सामने आए थे। डॉक्टर मार्गरेट चैन ने कहा है कि एहतियात के तौर पर निगरानी, संक्रमण का पता लगाने, पैदाइशी विकृति, तंत्रिका संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं और मच्छरों की रोकथाम और इलाज के लिए टीका विकसित करने में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ आना होगा। दरअसल स्वास्थ्य विशेषज्ञ जीका वायरस के संक्रमण और माइक्रोसेफली के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में लैटिन अमरीकी देशों में माइक्रोसेफली से पीड़ित बच्चे पैदा होने के मामले बढ़ गए हैं। माइक्रोसेफली वो स्थिति है जिसमें बच्चे अनुपात में छोटे सिर के साथ पैदा होते हैं। इन बच्चों का मानसिक विकास भी पूरा नहीं हो पाता। जहां माइक्रोसेफली और जीका वायरस को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, वहीं बीबीसी ने ब्राजील की एना कैरोलिना कैरेसेस से बात की। एना माइक्रोसेफली से पीड़ित हैं, लेकिन उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई है। एना कहती हैं,
O médico falou que eu não teria nenhuma chance de sobreviver. Tenho microcefalia. Meu crânio é menor que a média.
On the day I was born,
जिस दिन मैं पैदा हुई थी डॉक्टरों ने कहा था कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे माइक्रोसेफली है, मेरा सिर अनुपात में छोटा है। डॉक्टर ने कहा था कि मैं चल नहीं पाऊंगी, बोल नहीं पाऊंगी और फिर मैं मरने तक निष्क्रिय ही हो जाऊंगी। वो भी कई लोगों की तरह गलत थे। मेरे पिता बताते हैं कि जब मैं 1 साल की थी तब मैंने एक दिन एक पिल्ला देखा और उसके पीछे चल पड़ी। फिर मैं स्कूल गई, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी गई। आज मैं एक पत्रकार हूँ, मैं अपना ब्लॉग लिखती हूँ और मैं उन लोगों के लिए लिखती हूँ जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। मैं बहुत खुश हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिनमेयर ने कहा है कि जीका के बारे में जानकारी काफ़ी कम है, लेकिन करीब 60 साल से जीका वायरस का संक्रमण मौजूद रहा है। उनके मुताबिक ना ही ये डेंगू या चिकनगुनिया की तरह खतरनाक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जीका वायरस को लेकर इतना हंगामा क्यों? दरअसल पश्चिमी देशों में इबोला को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के लचर रवैये को लेकर आलोचना हुई थी। इसके अलावा जीका वायरस के संक्रमण के लक्षण भी ज्यादातर लोगों में नहीं दिखाई देते और फिर इसका ना कोई टीका है और ना कोई इलाज, इसलिए स्थिति और गंभीर हो गई है।
I think both the World Health Organization and the world have learned from Ebola, but the connection to Ebola is...
क्रिश्चियन लिनमेयर ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और दुनिया ने इबोला से सबक लिया है। हालांकि इबोला से इसे जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें इबोला की तरह इंसान से इंसान में संक्रमण नहीं होता और मौत की दर भी बहुत ज्यादा नहीं है। इसकी कोई दवा या टीका नहीं है। ऐसे में जब ये बीमारी बड़ी नहीं हुई है तब मच्छरों को मारने के लिए छिड़काव, पानी भर जाने से रोकना और खुद को मच्छरों से बचाने जैसे पारंपरिक रास्ते ही अपनाए जा सकते हैं। जीका वायरस के संक्रमण पर दुनिया का ध्यान तब तेजी से गया जब ब्राजील में इससे जुड़े हजारों मामले सामने आने लगे। ब्राजील में माइक्रोसेफली से पीड़ित कई बच्चों के जन्म से खतरे की घंटी बज गई। रियो डी जेनेरो में आगामी ओलंपिक खेलों से पहले जीका वायरस के बढ़ते मामलों ने ब्राजील की चिंता बढ़ा दी है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक करीब 40 लाख लोग जीका वायरस के संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं।
ये थी हरिता कांडपाल और अब चलते हैं अमरीका। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले उम्मीदवार तय करने की आधिकारिक शुरुआत आयोवा राज्य से हो रही है। आयोवा राज्य में आज रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ही के समर्थक अपने अपने उम्मीदवारों को चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। डेमोक्रेट्स में सीधी टक्कर हिलेरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स के बीच है, जबकि रिपब्लिकन्स में डोनाल्ड ट्रंप सर्वेक्षणों के अनुसार आगे चल रहे हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हरिता कांडपाल।
अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी अपने अपने उम्मीदवार तय करने की मुहिम शुरू कर चुकी हैं। पिछले महीनों में दोनों ही पार्टियों के दावेदारों ने इस राज्य के 350 से ज्यादा चक्कर लगाए हैं और कई रैलियां कर वोटरों को लुभाने की भरपूर कोशिश कर चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने की कोशिश में जुटे अरबपति व्यापारी डोनाल्ड ट्रंप जहां अपने विवादित बयानों से खासे चर्चा में रहे हैं, वहीं उनके विरोधी टेड क्रूज भी दावेदारी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन मतदाताओं के एक खास तबके को अपनी तरफ खींचने के लिए कभी खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले संगठन के साथ संबंध रखने वाले मुसलमानों के अमरीका में घुसने पर रोक लगाने की बात कही, तो कभी सभी मुसलमानों पर अमेरिका में घुसने पर रोक लगाने की बात कर दी। वहीं टेड क्रूज कभी ईसाइयत पर खतरे का हवाला देकर तो कभी ट्रंप को डेमोक्रेट्स का एजेंट करार देते हुए उम्मीदवारी पर कब्जा करने की कोशिश में हैं। डोनाल्ड ट्रंप आयोवा में डबल ट्री हिल्टन में रैली में आने के लिए वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।
I want to win Iowa. It's going to send such a great message that we're not going to take it anymore. We're not going to take it. We're not going to take it anymore.
डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मैं आयोवा को जीतना चाहता हूं। इससे अच्छा संदेश जाएगा कि बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा हम नहीं सहेंगे। हम अपना देश वापस लेंगे और अमेरिका को दोबारा महान बनाएंगे। हम बहुत खुश होने वाले हैं, हम उत्साहित होने वाले हैं, हमें फिर से गर्व महसूस होने वाला है। हम महान हैं और हमारे जैसा कोई नहीं है। आज रात वोटिंग में जरूर आइए। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। महीनों की मेहनत के बाद इन नेताओं के लिए आज इम्तिहान की घड़ी है। डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन को चुनौती दे रहे बर्नी सैंडर्स ने डेमोक्रेटिक पार्टी के अति वामपंथी तबके को रिझाने की कोशिश की है। वहीं हिलेरी क्लिंटन अपने विदेश मंत्री होने के अनुभव को भुनाने की कोशिश करती हैं। आइए सुनते हैं कि एक प्रचार रैली में हिलेरी क्लिंटन क्या कह रही हैं।
It is true. When you go to caucus tomorrow night, you are selecting not only the next president, but the next commander in chief.
जब आप दलों की बैठक में जाएंगे, आप सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बल्कि सेना का नया कमांडर इन चीफ चुनेंगे। हमारे देश को हमारे मूल्यों, हितों और सुरक्षा को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं जानती हूं कि इसके लिए क्या जरूरी है, क्योंकि कई सालों के अनुभव में मैंने देखा है कि राष्ट्रपति के सामने कैसी चुनौतियां आती हैं। फैसला सिर्फ एक राष्ट्रपति को करना होता है। हिलेरी क्लिंटन के शब्द। हिलेरी क्लिंटन बर्नी सैंडर्स से मामूली बढ़त से आगे बताई जा रही हैं। आयोवा में इस प्रक्रिया की शुरुआत का अपना महत्व भी है। वैसे तो आयोवा की आबादी मुश्किल से 30 लाख की है और यहाँ की जीत हार किसी उम्मीदवार की किस्मत का फैसला नहीं करेगी, लेकिन इन चुनावों की शुरुआत इसी राज्य से होती है और पहली जीत उम्मीदवारों को आगे के सफर में एक गति दे देती है।
तो जैसा कि आपने सुना कि आयोवा राज्य में आज वोट डाले जा रहे हैं, बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय एक स्थानीय मस्जिद में पहुंचे जहाँ कुछ भारत और पाकिस्तान से आकर बसे लोगों से उनकी मुलाकात हुई।
मैं इस समय आयोवा के डिमोइन शहर की एक मस्जिद में हूं, जहां शाम की नमाज के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस चुनाव के बारे में उनकी राय क्या है। यहां की जो मुसलमान कौम है वो ज्यादा डेमोक्रेट्स हैं या रिपब्लिकन?
ऐसे मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेट्स हैं।
डॉक्टर साहब, आप किसके सपोर्टर हैं, हिलरी के, क्लिंटन के, बर्नी सैंडर्स के?
मैं इस वक्त हिलरी क्लिंटन के सपोर्ट में हूं और मुझे पता है कि यंग लोग ज्यादातर बर्नी सैंडर्स के सपोर्ट में हैं। फॉर सम रीजन ही इज अ मैन ऑफ चेंज।
डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या राय है?
डोनाल्ड ट्रंप वो बहुत मशहूर तो हो रहा है, लेकिन हम लोग तो क्योंकि डेमोक्रेट हैं तो यू नो वी विल नॉट सपोर्ट हिम।
ट्रंप ये बातें कह रहा है और उसको सपोर्ट वो कर रहे हैं जिनके दिल में कुछ माइनॉरिटीज मुसलमानों के मतलब कुछ नेगेटिव व्यूज हैं।
ट्रंप के बारे में कोई चीज़ ऐसी भी है जो आपको अच्छी भी लगती हो?
हाँ, बस ये लगता है कि वो चाहता है कि जो लोग नए आ रहे हैं ये देखें कि वो सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं और यहाँ के मुल्क को कुछ फ़ायदा उठाने फ़ायदा देंगे।
आपके लिए वापस में कौम के अंदर जब बात होती है, क्या बात कर रहे हैं लोग ट्रंप के बारे में?
यहाँ पे काफ़ी लोग जो मेरे साथ काम करते हैं और वो कहते हैं कि वो ट्रंप जो कह रहा है वो सही कह रहा है।
मुसलमान?
नहीं, मुसलमान नहीं, हमारे साथ जो मेजोरिटी जो है वो नॉन मुस्लिम्स हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। उनका ख्याल ये है कि जो ज़्यादातर जो غلط باتیں امریکہ میں ہو رہی ہیں، یہ مائنورٹیز کی وجہ سے ہو رہی ہیں، کچھ بیڈ ایپلس تو ہوتے ہیں ہر جگہ پر، اب بجائے اس کے کہ آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کا تدارک کریں، آپ پوری کے پوری کمیونٹی کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ خراب ہیں، ہم پہلے ان کو بند کریں گے، بعد میں ان کو دیکھیں گے اس سے اچھے کون سے ہیں نہیں ہیں، تو وہ بات ایک قسم کی بہت گوز ٹو فار، یہ بہت ہی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے۔
آخری سوال، اور آپ چاروں ڈیموکریٹس ہیں، ہلری یا برنی سینڈرز؟
مجھے تو برنی سینڈرز پسند ہے۔
ہلری، ہلری کلنٹن،
میں تو بہت زمانے سے ہلری پیچھے۔
تو یہاں پر زیادہ تر ہلری کلنٹن کے سپورٹر ہیں، اور میری جو خاص کر مسلمان قوم میں لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیموکریٹ کوئی بھی آئے لیکن ایسا آئے جو ریپبلکن امیدوار کو ہرا سکے، کیونکہ انہیں سچ مچ میں ایک طرح سے خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانوں سے کافی گھبراہٹ ہے۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی، ڈی موائن، آئیوا۔
خبر سچ ہے اگر بی بی سی پر ہے۔
اور اب بات ان خبروں کی جن پر رہے گی آج ہم سب کی نظر۔
سپریم کورٹ میں آج سم لینگکتا کو اپرادھ کی شرینی میں رکھنے والی دھارا 377 پر سنوائی ہونی ہے۔ سم لینگکتا اپرادھ بنا رہے گا یا نہیں، اس پر سپریم کورٹ کی تین نیادھیشوں کی پیٹھ اہم سنوائی کرے گی۔ جسٹس ٹی ایس ٹھاکر، جسٹس انل آر دوے اور جسٹس جے ایس کھیر جیسے ورشتتم نیادھیشوں کی پیٹھ 8 کیوریٹو یاچکاؤں پر سنوائی کرنے والی ہے۔ دلی ہائی کورٹ میں آج دلی نگر نگم کے کرمچاریوں کی ہڑتال سے جڑی یاچکا پر سنوائی ہونی ہے۔ دلی میں نگر نگم کرمچاریوں کی ہڑتال کی وجہ سے کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اسے لے کر دلی سرکار اور بھاجپا کے بیچ آروپ پرتیاروپ کا دور جاری ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی آج کیرل اور تمل ناڈو کی یاترا پر جائیں گے۔ کیرل کے کوزی کوڈ میں پردھان منتری مودی تیسرے گلوبل آیوروید فیسٹیول میں حصہ لیں گے، پھر تمل ناڈو کے کوئمبتور جانے والے ہیں۔ پورو یو پی اے سرکار کی مہتوکانکشی گرامین روزگار گارنٹی یوجنا منریگا کو آج 10 سال پورے ہو رہے ہیں۔ کانگریس اپادھیکش راہل گاندھی اس موقع پر آندھرا پردیش کے انت پور جائیں گے۔ انت پور کے بندلا پلی گاؤں سے 2006 میں پورو پردھان منتری منموہن سنگھ اور کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی نے منریگا کی شروعات کی تھی۔ ریزرو بینک آف انڈیا بیاز دروں پر آج فیصلہ کر سکتا ہے۔ بجٹ سے پہلے مودرک نیتی پر آر بی آئی کی گھوشنا پر نویشکوں کی نظریں بنی ہوئی ہیں۔ آج گریٹر حیدرآباد نگر نگم میں چناؤ ہونے ہیں۔ چناؤ کے لیے ٹی آر ایس، کانگریس، ٹی ڈی پی، بھاجپا گٹ بندھن اور ایم آئی ایم نے پرچار میں پوری طاقت جھونک دی تھی۔ چناؤ کے لیے قریب 7,000 متدان کیندروں پر سرکشا کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں۔ متگننا 5 فروری کو ہوگی۔ امریکہ کے آیووا میں راشٹرپتی چناؤ کے لیے امیدوار چننے کے پہلے چرن میں ووٹنگ کے بعد 1,774 سیما پرانتوں کے نتیجے آج آنے کی امید ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے ڈونالڈ ٹرمپ اور ٹیڈ کروز راشٹرپتی پد کے امیدوار کی دوڑ میں شامل ہیں، وہیں ڈیموکریٹک پارٹی سے مقابلہ مکھیہ روپ سے ہلری کلنٹن اور برنی سینڈرز کے بیچ ہے۔
اور اب بات مدھیہ پردیش کی۔ مدھیہ پردیش کے ڈنڈوری ضلع کا بیگا چکدیش کا پہلا علاقہ ہے جہاں آدیواسیوں کو 2006 میں لاگو ون ادھیکار قانون کے تحت رہواس پٹہ دیا گیا۔ رہواس پٹہ ملنے کے بعد بیگا چک علاقے میں رہنے والے وشیش روپ سے سنرکشت بیگا آدیواسیوں کو اپنی زمین کے ساتھ ساتھ رہواس کے جنگل پر بھی پورا ادھیکار مل گیا۔ اب اس علاقے میں کسی بھی طرح کے سرکاری اور غیر سرکاری کاموں کے لیے ان آدیواسیوں کی رضامندی ضروری ہوگی۔ سنیے ڈنڈورا سے لوٹ کر آئے ہمارے سہیوگی آلوک پتل کی یہ خاص رپورٹ۔
حملہ پٹا چاہی رام، حملہ پٹا چاہی رام، ہی بیٹے ٹرا آواسی کے پٹا چاہی رے۔
ڈنڈوری ضلع کے بیگا چک علاقے میں ایسے اور اس سے ملتے جلتے گیت سینکڑوں لوگوں کی زبان پر عام ہیں۔ 1890 میں برٹش سرکار نے 23,000 ایکڑ چھیتر میں پھیلے بیگا آدیواسیوں کے 7 گاؤں کو رہواس کا ادھیکار دیا تھا۔ انہی 7 گاؤں کے سموہ کو بیگا چک کا نام دیا گیا۔ آزادی ملی اور اس کے بعد طرح طرح کے قانون لاگو ہوئے اور اپنی زمین سے ان بیگا آدیواسیوں کو بے دخل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ 2006 میں ون ادھیکار قانون آنے کے بعد ان بیگا آدیواسیوں کو گھر اور کھیتی کے زمین کے پٹے تو ملے، لیکن جس جنگل پر یہ بیگا آدیواسی آشرت تھے اس جنگل پر ون وبھاگ کا ادھیکار تھا۔ इलाके में काम करने वाली बैगा महापंचायत ने इन बैगा आदिवासियों को हैबिटेट राइट यानी रहवास के अधिकार के लिए अभियान चलाया। बैगाओं की परंपरागत मुखिया व्यवस्था के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। बैगा महापंचायत के हीरालाल सरोते कहते हैं,
जो गांव में मुखिया होते हैं, जो दवान, मुकदम, सम्राट और एक दवार होता है, ऐसे चार लोग पदाधिकारी होते हैं परंपरागत संस्था के, इनके माध्यम से ये जैसे करेंगे वैसा फिर ये हैबिटेट में काम आएगा। और रहवासी अधिकार के लिए हम लोग दवान, मुकदम, समर्थों से फिर बातचीत करना, मीटिंग करना शुरू किए, ऐसे सात गांव में शुरू किए।
सिलपीड़ी गांव के नानू रठुरिया बताते हैं कि रहवास का अधिकार नहीं मिलने से वन विभाग के कर्मचारी कभी भी आते थे और अतिक्रमण का आरोप लगाकर खेतों में आग लगाकर चले जाते थे। बैगा आदिवासियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता था।
और हमारे जड़ी बूटी और जो हमारे झाड़ पेड़ को काट के ले ली है, वन विभाग यहाँ घुस ली है, हम भी खेती कर रहे हैं तो यहाँ अतिक्रमण करते, हम हमारा माचा मैरा को ढील दिया, हमारा फसल को काट काट के उसको भी नाश कर दिए हैं। 13 आदमी को वहाँ डिंडोरी ले गया जिला में, और हमारे हल बखर को ले गया, हमारे माचा मैरा में आग लगा दिए।
इस तरह के शोषण के खिलाफ एक के बाद एक गाँव में बैगा आदिवासियों की बैठकों का सिलसिला चलता रहा और हजारों बैगा आदिवासी एकजुट होते चले गए। जिले के अधिकारियों ने भी माना कि इन विशेष रूप से संरक्षित बैगा आदिवासियों को अगर रहवास का अधिकार दिया जाए तो ये आदिवासी परंपरागत रूप से अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे। इसके बाद इस साल 13 जनवरी को बैगा चक के सात गांवों के 23,000 एकड़ क्षेत्र में बैगाओं को रहवास अधिकार का प्रमाण पत्र बांटा गया। जिले की कलेक्टर छवि भारद्वाज रहवास के अधिकार को सीधे तौर पर बैगा आदिवासियों की संस्कृति से जोड़ती हैं।
नॉर्मल सिविलाइजेशनल जो कम्युनिटीज है अगेंस्ट दोज, इन लोगों का एक फॉरेस्ट से एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है, और वो जिस तरीके से कोएग्जिस्ट करते हैं कि जिस पूरे कल्चर उसके अराउंड में बना हुआ है, उसको ये राइट है, ये रिकॉग्नाइज करता है।
हैबिटेट राइट यानी रहवास अधिकार का पट्टा मिलने के बाद इलाके के बैगा आदिवासी बेहद खुश हैं। सिलपीड़ी गांव के चर्रा सिंह रठुड़िया बहुत विस्तार से अपने अधिकार के बारे में समझाते हैं।
तो अंग्रेजी में हैबिटेट राइट होता है, हमारे हिंदी में और गोड़ी भाषा में हमारा रहवासी। अब हमारे गांव में हम उतक दिन फॉरेस्ट वाले मुरम गढ़ा नहीं दे, मुरम हम खुदे सकता, हमारा अधिकार है, हैं? बिना पूछे हमारे गाँव में बिल्कुल अक्टी खूटा नहीं गाड़ सके सरकार।
बाघ साइड पत्थर जो निकलेगी या खुदान खोदेंगे कहेंगे तो हम नहीं खोदने देंगे कहेंगे, ये जंगल हमारा है, जमीन हमारा है।
धुरकुटा पंचायत के बैगा आदिवासी अमर सिंह रठुड़िया बताते हैं कि कुछ साल पहले उनके गांव को कान्हा के बाघ परियोजना में शामिल करने की योजना बनी थी, लेकिन अब रहवास अधिकार मिलने के बाद वे इस चिंता से मुक्त हो गए हैं।
हैबिटेट राइट का पट्टा जो मिले है तो हम सोच रहे हैं कि वो हमारा पूरी हक मिल गया, समझो जो कान्हा कान्हा बोलते हैं वो कान्हा भी जैसा बनने के लिए तैयार हो गए तो उसको हम रोक लगा सकते हैं उसी के आधार पे। फैक्ट्री खदान खुलेंगे तो सर वो नक्शा की ओर से रोकेंगे।
इस हैबिटेट राइट यानी रहवास अधिकार का पट्टा बैगा समुदाय को मिला है। हमने अजगर गांव में बैगाओं से मिलकर पूछा कि अगर उनके समुदाय के शीर्ष पदाधिकारियों, मुकद्दम यानी मुखिया, दीवान यानी मुखिया का सलाहकार, समर्थ यानी सूचना मंत्री और दवार यानी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिम्मेवार अधिकारी को किसी खदान वाले ने, जंगल विभाग ने या निजी कंपनियों ने बरगला दिया तब ये बैगा आदिवासी क्या करेंगे? जवाब खुद ही सुन लीजिए।
नहीं नहीं मिलेंगे सर।
सभी जनता मिलकर दीवान मुकदम को हम डांट लगाएं। जब हमारे हैबिटेट के अंदर में तुम क्यों इनको जगह दे रहे हो, हमारा सब बर्बादी कर रहे, हमारा पत्थर को लेज रहे हैं और हमारा लकड़ी को काट काट लेज रहे हैं, हमारा फिर मुरुम मिट्टी को लेज रहे हैं, तो हम नहीं देंगे, तुम क्यों उनको जगह देते हो, तुमने घूस खाए दवान मुकदम, तो हम जनता लोग हम उनको कहेंगे कि हम नहीं देंगे, तुम कैसा दवान मुकदम हो, तुम गलत काम कर रहे हो।
टेलीविजन और मोबाइल के नेटवर्क से कोसों दूर इन बैगा आदिवासियों में लड़ने का जज्बा अब भी बचा हुआ है और सच को सच की तरह कहने का साहस भी। शाम का वक्त हो रहा है और गांव की बैगा आदिवासी महिलाएं अपने गीतों में कह रही हैं कि अपने अधिकार को बनाए और बचाए रखने की सजगता हमेशा बनी रहेगी। आलोक पुतुल, BBC, डिंडौरी।
और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो गया और हरिता अखबारों के साथ मौजूद है। जी बताएं हरिता।
जी इकबाल जी, आज सबसे पहली खबर है पिटाई के वीडियो पर घमासान, संघ मुख्यालय के बाहर पुलिस कार्रवाई पर आप कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। नवभारत टाइम्स ने इसे मुख्य रूप से छापा है, दिल्ली में,
नागपुर नहीं, ये बताना जरूरी है।
संघ का ये दफ्तर था, इसके बाहर हुई है ये कार्रवाई। जनसत्ता ने लिखा है फिर सामने आई दिल्ली पुलिस की बेरहमी। और एक और खबर नई दुनिया में छपी हुई है, ये मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा कानून लागू न करने पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या गुजरात भारत से अलग होना चाहता है। और नवभारत टाइम्स ने भी इसमें यही हेडलाइन छापी, क्या गुजरात देश में नहीं है। नवभारत टाइम्स ने एक और छोटी सी खबर छापी है मुख्य पृष्ठ पर, पैरामिलिट्री की पहली महिला चीफ, इस बारे में एक खबर छपी। और हिंदू में जिस खबर को मुख्य रूप से दिया गया है, महिला और बाल विकास मंत्री मनेका गांधी ने कहा है कि भ्रूण के लिंग की जांच की जाए। नई दुनिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है, गर्भवती होने हो तो बता दो, शिशु का लिंग इसकी निगरानी की जानी चाहिए, मेनका गांधी ने लिखा है। दैनिक भास्कर ने भी इसको प्रमुखता दी है कि जन्म से पहले पता होना चाहिए लड़की है या लड़का। और अमर उजाला और कुछ अन्य अखबारों ने पठानकोट हमले से जुड़ी एक खबर को प्रमुखता दी है, इसे हेडलाइन बनाया गया है। अमर उजाला ने लिखा है पठानकोट पर पाक ने बदला पैंतरा, भारत की ओर से दिए गए सबूतों को बताया नाकाफी। दैनिक जागरण ने भी इसे हेडलाइन बनाया है और लिखा है कि पाक ने मांगे और सबूत, भारत के सबूतों को कमज़ोर बताया। एक अंग्रेजी अखबारों में जो खबर प्रमुखता से छपी है, द पायनियर ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर को मिलेगी नई सरकार, देश को आज इसके बारे में पता चलेगा।
जी हरिता, बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब वक्त हो चला खेल समाचार का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया से 2020 सीरीज 3-0 से एक तरफा रूप से अपने नाम करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम अब श्रीलंका से 2-2 हाथ करेगी। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसका पहला मैच 9 तारीख को पुणे, दूसरा मैच 12 तारीख को रांची और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला 14 तारीख को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने भी श्रीलंका के खिलाफ खेलने वाली टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी ही संभालेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई दौरे में जमकर खेलने वाले विराट कोहली को आराम दिया गया है। टीम में अधिक बदलाव तो नहीं हुए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम एक दिवसीय मैच में शतक बनाने वाले मनीष पांडे को टीम में जगह मिल गई है। उनके अलावा भुवनेश्वर कुमार और पवन नेगी को भी टीम में शामिल किया गया है। बाकी खिलाड़ी वही हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, उमेश यादव को टीम में जगह नहीं मिली। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2020 सीरीज के पहले मैच में नाबाद 90, दूसरे मैच में नाबाद 59 और तीसरे मैच में 50 रन बनाने वाले विराट कोहली को इसका इनाम मिला और वो ICC 2020 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच को पीछे छोड़ा। उधर भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग IPL के आगामी 9वें सीजन में नई भूमिका में नजर आएंगे। उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब का मेंटर बनाया गया है। वहीं न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को ऑकलैंड में खेले गए तीसरे और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 3 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम की, तो उसके बाद उसने भारत में मार्च अप्रैल में होने वाले 2020 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया। टीम की कमान केन विलियमसन को सौंपी गई है। टीम में मार्टिन गप्टिल, रॉस टेलर, कोरी एंडरसन और ल्यूक रॉन्ची जैसे जाने पहचाने चेहरों के बीच नाथन मैकुलम, इस सोडी और मिचेल सेंटनर के रूप में 3 स्पिनर भी हैं।
और अब प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका वायरस के संक्रमण को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। संगठन की महानिदेशक मार्गरेट चान ने जीका वायरस के संक्रमण के इलाज के लिए दवाएं और टीका बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। ब्राजील की सरकार ने कहा है कि जीका वायरस के संक्रमण से रियो में होने वाले ओलंपिक खेलों पर कोई खतरा नहीं है। ब्राजील के अधिकारियों का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को छोड़कर खिलाड़ियों पर कोई मुश्किल नहीं है। सीरिया के विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के साथ उनकी सकारात्मक बातचीत हुई है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सीरिया शांति वार्ता की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने कहा है कि क्यूबा पर से अमेरिका के प्रतिबंध हटा लिए जाने चाहिए। क्यूबा के राष्ट्रपति राहुल कास्ट्रो फ्रांस की यात्रा पर पहुंचे हैं। सऊदी अरब ने इस बात को माना है कि अफगानिस्तान में सक्रिय चरमपंथी संगठन अलकायदा के लिए अरबों डॉलर का इंतजाम सऊदी वित्तीय सिस्टम से हुआ था। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली हेमंत कुशवाहा ने। अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।